कुछ भी हमेशा नहीं रहता और बैटरीज भी इससे अलग नहीं है। जितनी पॉपुलर लिथियम आयन टेक्नोलॉजी एनर्जी स्टोरेज के लिए हो सकती है, उसमें भी कुछ कमियां हैं। सबसे बड़ी कमी है डिग्रेडेशन। आप लिथियम आयन से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो बहुत देर तक पीक परफॉर्मेंस पे चले। लेकिन क्या होगा अगर हम एक ऐसी बैटरी बना सकें जो डिग्रेड ना हो, कम से कम थोड़ी देर के लिए? चाइना की कंटेम्पररी एम्प्रेक्स टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड, जो सीएटीएल के नाम से ज्यादा जानी जाती है, शायद ये कर दिखाया है। इसकी लेटेस्ट बैटरी टेनर का सेलिंग पॉइंट ये है कि ये 5 साल तक बिना पावर डिग्रेडेशन या कैपेसिटी लॉस के चल सकती है। पर कैसे? क्या हम बैटरी इमोर्टैलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं? मैं हूं मैट फेरल, स्वागत है आपका अनडिसाइडेड में। ये वीडियो सर्फशार्क के द्वारा स्पॉन्सर किया गया है, लेकिन इसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो ये जादू की उम्र को मात देने वाली बैटरी कहां से आई? टेनर ने पहली बार EES यूरोप 2021 कॉन्फ्रेंस में डेब्यू किया था म्यूनिख में इस समर की शुरुआत में। अब सीएटी अकेला नहीं था, सैमसंग और एलजी भी वहां थे अपने एडवांस्ड एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स यानी ESS को शोकेस करते हुए। और इन सब में एक चीज कॉमन थी, ये सब लिथियम आयन फॉस्फेट यानी LFP बैटरी यूज करते हैं। यह इंटरेस्टिंग है क्योंकि LFPs कोई नए कटिंग एज मटेरियल नहीं है, हमने पहले भी इनके बारे में बात की है। LFPs कम से कम 1996 से हैं और ये वेल अंडरस्टूड ट्राइड एंड टेस्टेड बैटरी फॉर्मूला है। LFPs एक तरह की लिथियम आयन बैटरी हैं, जैसे कॉमन निकल मंगनीज, कोबाल्ट या NMC केमिस्ट्री जो हम EVs में देखते हैं। इनमें वही पॉजिटिव क्वालिटीज हैं जो NMCs को बैटरी वर्ल्ड का किंग बनाती हैं। इनमें एक ट्विस्ट भी है, कोबाल्ट को हटा देते हैं। अब कोबाल्ट महंगा और खतरनाक होता है, इस एलिमेंट को हटाने से LFPs ज्यादा सेफ, कम टॉक्सिक और स्टैंडर्ड NMC बैटरीज से ज्यादा ड्यूरेबल हो जाती हैं। कोबाल्ट का कॉन्ट्रीब्यूशन थर्मल रनअवे के चांसेस बढ़ा देता है। कोबाल्ट और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड फॉस्फोरस और ऑक्सीजन के बॉन्ड से कम स्ट्रांग होता है, इसलिए LFP कोबाल्ट वाली बैटरी से ज्यादा अब्यूज जैसे ओवरचार्जिंग और हीट को झेल सकती है। ये याद रखना जरूरी है कि कोबाल्ट की सप्लाई चेन के बड़े इंप्लीकेशंस होते हैं, जैसे किसी भी क्रिटिकल मिनरल के साथ होता है। एक ही देश या कुछ ही देशों का इससे प्रोड्यूस करना आइडियल नहीं होता। इस केस में दुनिया का ज्यादा कोबाल्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कांगो में सेंट्रलाइज्ड है। इसे माइनिंग इंडस्ट्री में एक्सट्रीम एक्सप्लॉयटेशन होती है ताकि सेल फोन्स और EVs जैसे कमोडिटीज की बढ़ती डिमांड को पूरा किया जा सके। लेकिन कोबाल्ट का यूज पहले प्लेस पे क्यों होता है, वो ये है कि LFPs एनर्जी डेंसिटी या स्पेसिफिक एनर्जी और ऑपरेटिंग कैपेसिटी में थोड़े शॉर्ट आते हैं। इसको कॉम्पेंसेट करने के लिए ये NMC बैटरी जितनी पावरफुल होने के बावजूद बल्की होते हैं, और इन रीजंस की वजह से NMCs LFPs से पॉपुलैरिटी में आगे रहे हैं। लेकिन अगर आप स्टेशनरी बैटरी हो तो एक्स्ट्रा साइज और वेट कोई प्रॉब्लम नहीं है। इससे LFPs को ट्रेडिशनल NMCs के ऊपर एक एडवांटेज मिलता है। NMCs ऑलरेडी काफी सेफ हैं, लेकिन जब आपके पास हंड्रेड्स या थाउजेंड्स ऑफ सेल्स एक बैटरी पैक में होती हैं और लोग उन पर डिपेंड करते हैं, तो आपको जितनी सेफ्टी मिल सके चाहिए होती है। इसी वजह से बहुत लोग, इंक्लूडिंग myself, इन्हें लार्ज स्केल और रेजिडेंशियल एनर्जी स्टोरेज में यूज करने में इंटरेस्टेड हैं। ये सिस्टम्स प्लग एंड प्ले और मॉड्यूलर होने के लिए डिजाइन किए गए हैं, जो कंटेनराइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी स्टोरेज अलाउ करते हैं। टिपिकली एक एनर्जी स्टोरेज सिस्टम या ESS कुछ बेसिक पार्ट्स से मिलकर बनता है, जैसे बैटरीज फॉर एनर्जी स्टोरेज, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स और कन्वर्टर्स फॉर एनर्जी ट्रांसफर, थर्मल मैनेजमेंट सिस्टम्स फॉर सेफ्टी मॉनिटरिंग सिस्टम्स और हाउसिंग फॉर हाउसिंग ऑल दोज सिस्टम्स। लार्ज स्केल ESS बड़े मेटल कंटेनर्स होते हैं, यूजुअली अराउंड 20 फुट लॉन्ग। रेजिडेंशियल यूज के लिए ESSs मेरे गैराज में कंसिडरेबली छोटे होते हैं। रिन्यूएबल्स के राइज के साथ एनर्जी स्टोर करने की जरूरत बढ़ रही है। सोलर पैनल्स अब ज्यादा एफिशिएंट और अफोर्डेबल हैं। तो ये कोई सरप्राइज नहीं कि ग्लोबल एनर्जी मार्केट पिछले साल 3 गुना हो गया। दुनिया को रिन्यूएबल एनर्जी चाहिए और इसका मतलब हमें ESSs की जरूरत है। इसलिए CATL और दूसरे इंडस्ट्री जायंट्स LFPs और ESSs में हैवी इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये है बिलियन डॉलर क्वेश्चन, CATL टेनर बैटरी इतने लंबे टाइम तक डिग्रेडेशन से कैसे फाइट करती है? वेल, सुपरफिशियली टेनर सिस्टम टेस्ला के मेगापैक जैसा ही लगता है। ये एक बंच ऑफ बैटरी पैक्स हैं जो 20 फुट लॉन्ग मेटल बॉक्स में हाउस्ड हैं, इंटेंडेड फॉर ग्रिड स्केल स्टोरेज। ऑफ कोर्स टेनर पैक्स में CATL की L सीरीज LFP बैटरीज हैं। ये बैटरीज कलेक्टिवली 6.25 मेगावाट आवर्स की एनर्जी डेंसिटी रखती हैं, जो 3.9 से काफी ज्यादा है टेस्ला के मेगापैक्स के मेगावाट आवर्स। KTL के मुताबिक ये उनके पुराने मॉडल के मुकाबले एनर्जी डेंसिटी में 3% इंप्रूवमेंट है और यह लगभग 20% छोटा भी है। KTL का कहना है कि उनका नया टेनर बैटरी सिस्टम 15,000 साइकिल्स तक डेली यूज हो सकता है, 5 साल तक बिना पावर और कैपेसिटी डिग्रेड हुए। ये काफी इंप्रेसिव बात है। तो पर्दा के पीछे क्या है? पर्दा उठाने से पहले एक और टेक है जो मुझे काफी टाइम से सुपर यूजफुल लग रही है और ये तुम्हारी डेली डिजिटल लाइफ में भी काफी मदद कर सकती है। आज का स्पॉन्सर है सर्फशार्क। मैं सर्फशार्क काफी टाइम से यूज कर रहा हूं और मुझे इससे फायदा मिलता है। मैन कनाडा गया था एक विंड फार्म देखने। मैन जल्दी ही वापस कनाडा जाने वाला हूँ, पर उसके बारे में बाद में बात करूंगा। मैंने होटल रूम में सर्फशार्क यूज किया, आईपी एड्रेस यूएस का लगे, टीवी शोज स्ट्रीम कर सकूं। सर्फशार्क एक फास्ट इजी टू यूज वीपीएन है, इनक्रेडिबल फीचर्स से भरा हुआ, एक अकाउंट से अनलिमिटेड डिवाइसेस पर इंस्टॉल कर सकते हो। लेकिन बस इतना ही नहीं, कभी कभी शॉपिंग सर्विसेज भी लोकेशन के बेसिस पर प्राइसेस को गेट करती हैं, तो तुम अपनी लोकेशन चेंज करके बेस्ट डील पा सकते हो। उनके वीपीएन सर्विस के साथ कुछ एडऑन्स भी हैं, जैसे सर्फशार्क अलर्ट जो तुम्हें बताएगा अगर तुम्हारा ईमेल या पर्सनल डिटेल्स जैसे पासवर्ड्स ऑनलाइन डेटा ब्रीच में लीक हो गए हैं। अभी वो एक स्पेशल डील चला रहे हैं, मेरा कोड अनडिसाइडेड यूज करो और 4 एडिशनल महीने फ्री पाओ। सर्फशार्क 30 दिन का मनी बैक गारंटी ऑफर करता है, तो ट्राई करने में कोई रिस्क नहीं है। जैसे मैंने कहा, मैं सालों से सर्फशार्क यूज कर रहा हूं और मुझे ये बहुत पसंद है। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और सर्फशार्क और आप सभी का चैनल सपोर्ट करने के लिए शुक्रिया। तो सीएटीएल के एलएफबी कर्टन के पीछे क्या है? वेल, उनकी लॉन्जेविटी का सीक्रेट सॉस है बायोमिमेटिक सॉलिड इलेक्ट्रोलाइट इंटरफेस या एसईआई मटेरियल और एक सेल्फ असेंबलिंग इलेक्ट्रोलाइट का कॉम्बो। ये सुनने में काफी कॉम्प्लिकेटेड लगता है, तो चलो इसे तोड़ते हैं। नॉर्मली जब लिथियम मेटल एनोडे इलेक्ट्रोलाइट से कॉन्टैक्ट करता है, तो ये स्पॉन्टेनियसली SEI लेयर क्रिएट करता है। ये एक फाउंडेशनल प्रोटेक्टिव लेयर है जो बैटरी की परफॉर्मेंस और लाइफ स्पैन में रोल प्ले करती है। अगर SEI सही से फॉर्म नहीं होती तो काफी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। चीफली ये लिथियम आयन्स को इलेक्ट्रोड से कंडक्ट करने में स्ट्रगल कर सकती है, जो आयोनिक ट्रैफिक जैम्स क्रिएट कर सकती है और डेंड्राइट्स फॉर्म होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और डेंड्राइट्स छोटे मेटल स्पाइक्स होते हैं जो बैटरीज के चार्ज और डिस्चार्ज होने पर ग्रो करते हैं। बार बार चार्ज करने से डेंड्राइट्स इतने बड़े हो सकते हैं कि बैटरी को पंक्चर कर दें और परमानेंट डैमेज कर दें। इसलिए अच्छी SEI लेयर एंश्योर करना क्रिटिकल है ताकि बैटरी लंबी चले और अच्छा परफॉर्म करे। अब बायोमिमेटिक पार्ट का मतलब बस ये है कि उनका SEI नेचुरली अकरिंग और हेल्पफुल टाइप का SEI को मिमिक कर रहा है। अब सेल्फ असेंबलिंग इलेक्ट्रोलाइट टेक्नोलॉजी सुनके आपको टी हनजार याद आ सकता है। ये काफी सिंपल है। जब ये इलेक्ट्रोलाइट्स एनोड से कॉन्टैक्ट करते हैं तो ऑर्गेनाइज्ड शेप्स में असेंबल हो जाते हैं। सेल्फ असेंबलिंग का मतलब ये है कि एक केमिकल या फिजिकल रिएक्शन सॉलिड स्ट्रक्चर को डायरेक्टेड मैनर में बनाता है। हमारे हाईवे एनालॉजी पे वापस आते हैं। ये आयंस के ट्रैवल करने के लिए कन्वीनियंट रोड्स प्रोवाइड करता है, ट्रैफिक जैम्स और नुकसान को मिनिमाइज करता है। ये टेक्नोलॉजीज फ्लो में मदद करते हैं लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी इंश्योर करते हुए, और डेंड्राइट्स, शॉर्ट सर्किट्स और थर्मल रनअवे के डेंजर्स को मिनिमाइज करते हैं। इनके कंबाइंड पावर्स के साथ ये फीचर्स टेनर के अंदर LFPs को वेयर एंड टीयर से बचाते हैं, या कम से कम पहले 5 साल तक। तो अगर टेनोर सच में इतना अच्छा है, क्योंकि अभी तक हम सिर्फ कैटल की बात मान सकते हैं, ये अब तक का एकलौता एनर्जी स्टोरेज सॉल्यूशन है जो मास प्रोड्यूस हो सकता है बिना डिग्रेड हुए पहले 5 साल तक। ये एनर्जी स्टोरेज के लिए एक बड़ा स्टेप फॉरवर्ड हो सकता है, स्पेशली क्योंकि ये मैच्योर बैटरी केमिस्ट्री पे बेस्ड है। टेनोर पोटेंशियली एक ऐसी दुनिया को रिप्रेजेंट करता है जहां हमें कम बैटरीज बनानी पड़ेंगी और उन्हें कम फ्रीक्वेंटली स्वैप करना पड़ेगा। थियोरेटिकली ये रिन्यूएबल्स को मॉडर्न ग्रिड में इंटीग्रेट करने के कुछ रफ एजेस को स्मूथ कर सकता है और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को काफी ईजी बना सकता है। ये भी वर्थ नोटिंग है कि CATL और रोल्स रॉयस ने रिसेंटली एक स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन अग्रीमेंट साइन किया है टेनर सिस्टम्स को UK और EU में लेने के लिए। लेकिन सुपर लॉन्ग लास्टिंग इलेक्ट्रिक रोल्स रॉयसेस के लिए ज्यादा एक्साइटेड होने से पहले मैं क्लैरिफाई कर दूं कि ये अग्रीमेंट रोल्स रॉयस के पावर सिस्टम्स डिवीजन ने साइन किया है, जो स्टेशनरी एनर्जी स्टोरेज पे फोकस करते हैं, लग्जरी कार्स पे नहीं। फिर भी कंपनी का बैकिंग इसे एक सर्टन पोश क्लाउट जरूर देता है। CATL का टेनोर सिस्टम EES यूरोप पे एक नया LFP था, लेकिन LG एनर्जी सिस्टम्स ने भी अलग साइजेस के ESS दिखाए, जिसमें से एक ग्रिड स्केल जायंट 3.14 मेगावाट आवर्स का स्टोरेज कर सकता है। LG अगले साल इस सिस्टम का रिलीज प्लान कर रहा है, लेकिन अभी तक इस ESS के बारे में ज्यादा रिवील नहीं किया गया। मैं इंटरेस्टेड हूँ रिलीज डेट के बारे में जानकर। LG ने N ब्लॉक A भी हाईलाइट किया, जो रेजिडेंशियल यूज के लिए LFP बेस्ड ESS है। ये ESS पिछले सितंबर डेब्यू हुआ था और अब मार्केट में आ रहा है। इसका फुटप्रिंट सिर्फ 451x330 mm है, जो 1 foot by 1 foot और आधा के बराबर है, और 5 ft टॉल है, जिससे ये ESS इजिली एक कॉर्नर या वॉल के अगेंस्ट फिट हो सकता है। इसमें और भी कुछ नीट फीचर्स हैं और ज्यादा कैपेसिटी चाहिए। ये एक ब्लॉक एक बुककेस की तरह काम करता है। दरवाजा खोलो और एक और मॉड्यूल डाल दो, मैक्सिमम 5 मॉड्यूल्स तक जा सकता है। टोटल कैपेसिटी 15.5 किलोवाट आवर्स है। इंस्टॉल करना भी इजी होना चाहिए। LG कहता है कि एक इंस्टॉलर इसको सिर्फ 15 मिनट्स में सेट कर सकता है, पर मैं तभी मानूंगा जब अपनी आंखों से देखूंगा। वैसे Samsung ने अपना ESS इंटर बैटरी शोकेस EES यूरोप में प्रेजेंट किया, जिसका नाम है Samsung बैटरी बॉक्स 1.5। नाम ज्यादा ओरिजिनल नहीं है, पर बात सीधी है। इसमें ज्यादा कॉमन NCA फॉर्मूला यूज होता है, लेकिन सैमसंग अपने बेट्स हेज कर रहा है एक टू ट्रैक स्ट्रेटजी के साथ। यहां ये दोनों NCA और, आपने सही गेस किया, LFP बैटरीज डेवलप कर रहा है ESS मार्केट के लिए। सैमसंग की NMX LFP बैटरीज ESS मार्केट में आने वाली हैं 2026 तक, और उनके CEO के मुताबिक ये सब सैमसंग SDI का प्लान है ग्लोबल मार्केट लीडर बनने का जब बात ESS की आती है।
I'm playing both sides so that I always come out on top.
CATL बैटरी स्पेस में एक बड़ा प्लेयर है। टफ कंपटीशन के बावजूद सैमसंग ने अच्छा स्टार्ट किया है। अभी उन्होंने नेक्स्ट एरा एनर्जी के साथ डील साइन की है, जो US में मेजर ग्रीन एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है। सैमसंग नेक्स्ट एरा 6.3 गीगावाट आवर्स का ESS सप्लाई करने वाला है। अगर आप US में रहते हो तो आपको नियर फ्यूचर में ज्यादा LFPs देखने को मिल सकते हैं। लगता है LFPs की तरफ रुख बदल रहा है। ये पुराने खिलाड़ी हो सकते हैं, लेकिन CATL और दूसरों को ES यूरोप में देख कर लगता है ये नए ट्रिक्स सीख रहे हैं, और इस बात से थोड़ा एक्साइटेड होना तो बनता है। इन ESS का एक फायदा ये है कि इन्होंने कमर्शियलाइजेशन और मास प्रोडक्शन के हर्डल्स पार कर लिए हैं। अब बस थोड़ा वेट करना पड़ेगा देखने के लिए कि ये अफोर्डेबल हैं या नहीं। फिर भी दुनिया को एक बेटर ESS की भूख लग रही है। जैसे रोल्स रॉयस और CATL के अग्रीमेंट ने हाईलाइट किया, डील्स बन रही हैं और अडॉप्शन भी करीब लग रहा है। और बात करें करीब की, मैं एवरीथिंग इलेक्ट्रिक कैनेडा शो में वैंकूवर में होने वाला हूँ, सितंबर 6 से 8 के बीच। मैं पैनल्स मॉडरेट करूंगा टॉपिक्स पे, जैसे हीट पंप्स के बारे में सब कुछ, विंड, सोलर और स्टोरेज के इंपैक्ट्स, इंडक्शन कुकिंग, और एक पैनल पे होम एनर्जी हैक्स के बारे में भी रहूंगा। ये एक फैंटास्टिक शो है, एवरीथिंग इलेक्ट्रिक के बारे में, तो बैटरीज, रिसाइकिलिंग, सोलर और बहुत कुछ और। आप टेस्ट राइड्स भी ले सकते हो और काफी कूल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स देख सकते हो। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मेरा कोड EMATTYTWINS यूज करो शो टिकट्स पे 20% ऑफ के लिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, और अगर जाते हो तो जरूर बोलना अगर मुझे देखो। आपका क्या कहना है? क्या आपको लगता है ये नए LFP एडवांसेस हमारी एनर्जी स्टोरेज नीड्स में फर्क लाएंगे? कॉमेंट्स में बताना और मेरा फॉलो अप पॉडकास्ट जरूर सुनना। अभी तक डिसाइड नहीं हुआ, पर हम ये कॉन्वर्सेशन जारी रखेंगे। और हमेशा की तरह मेरे पेट्रंस को थैंक्स फॉर योर कंटिन्यूड सपोर्ट। अगली बार मिलते हैं।